मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, AFEIS के आज 4 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं भगीरथ कुमार, इनका गांव है भोलसर, ये भागलपुर बिहार से हैं, और दूसरे मित्र हैं नीतिका सिंह जो लखनऊ से हैं, और मुझे इनके राज्य बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं वस्तुनिष्ठ दृष्टि पर बात करूंगा, लेकिन आइए पहले जो एक दो कुछ छोटी छोटी दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो है, अभी वो COVID-19 विशेषांक के रूप में ही, आप कह लीजिए, अपनी रात्रि समाचार का प्रसारण कर रहा है, तो उसमें जो एक दो अच्छे आंकड़े मिले हैं जो आपके दिल के थोड़े से मुरझा रहे या अलसा रहे फूल में एक ताजगी के छींटे शायद दे सकेंगे, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा। एक तो अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो धीरे धीरे उसकी गति कम होती जा रही है। कुछ समय पहले मैंने अपने इसी डेली ऑडियो लेक्चर में आपको सूचना दी थी कि अब ये 10 दिन में दुगने हो रहे हैं, 11 दिन में दुगने हो रहे हैं, अब ये 12 दिन में दुगने हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो स्वस्थ होने की जो रफ्तार है वह भी बेहतर हो रही है, वह अब 26% हो गई है, राइट? दोस्तों, जो दूसरी खबर है, जो फ्राइडे सैटरडे की खबर है, वो ये है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, उसको लेकर के किस तरीके से जो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके पद पर बने रहने की संभावनाओं के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगने लगा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा है कि विधान परिषद के चुनाव समय पर करा लिए जाएंगे, और अगर विधान परिषद के चुनाव होंगे तो डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर सदन के सदस्य बन जाएंगे और फिर इस तरह से मुख्यमंत्री वो लगातार बने रहेंगे। इसके बारे में मैं आप लोगों से हो सका तो कल कुछ बातें करूंगा, है ना, कि इसका हम विश्लेषण कैसे करें, विश्लेषण करने के कैसे तरीके हो सकते हैं। और दोस्तों, सच पूछिए तो इसीलिए मैंने आज यह विषय भी चुना है, वस्तुनिष्ठ दृष्टि। इसके पीछे दो कारण है और इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि आपको लगे कि यार यार ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, तो इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो क्या फायदा। दोस्तों, लेकिन जो आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूं कह लीजिए कि यह उसके नींव में है जो मैं आज आप जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, वस्तुनिष्ठ दृष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि अब हम जहां आ गए हैं, आज 4 मई है और जो लॉकडाउन का पीरियड है वो अब बढ़ा करके आप जानते हैं 17 मई तक कर दिया गया है। जो प्री एग्जामिनेशन की जो डेट थी अभी तक जो होने वाली थी वो 31 मई थी, तो अगर वो 31 मई रखी जाती है तो बीच में आप देखिए कि केवल 14 दिन का वक्त बचता है, लेकिन इस बीच में भी अभी क्या होगा हम कुछ भी नहीं जानते, तो इसलिए सामान्य से सा अब यह लगने ही लगा है कि जो एग्जामिनेशन की डेट है वो बढ़ेंगे। और हमारे जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जम्मू में एक टीवी इंटरव्यू में ये दिया भी था कि जो प्री एग्जामिनेशन है उसको हम डिफर कर रहे हैं या कर चुके हैं या करेंगे, जो भी बात उन्होंने कही, तो यह संभावना लगभग लगभग सुनिश्चित हो गई है कि डेट आगे बढ़ेगी। कब बढ़ेगी और वास्तव में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, एक ऑफिशियल तौर पर जब तक UPSC इसकी घोषणा नहीं करती है तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेट बढ़ भी जाए नहीं भी बढ़े तो जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी तैयारी की गति में कोई ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। ये मेरी एक एडवाइजरी है, कह लीजिए मैं एडवाइजरी जारी कर रहा हूँ आप सबके नाम पर, आप लोग जैसा भी चाहें कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि हम अभी प्री एग्जामिनेशन में जो टेस्ट सीरीज हैं उनको कैसे सॉल्व करें, इस पर हम लोग बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अब उसे थोड़ा सा रोक देते हैं और जो बहुत ही दूसरे इंपॉर्टेंट विषय हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन की बात कर जिनके माध्यम से की जा सकती है वह करना चाहिए, और उसके लिए मैंने ये वस्तुनिष्ठ दृष्टि चुना है। इस विषय को चुनने के पीछे एक और कारण है दोस्तों, कारण ये है कि मेरे पास कुछ मेल आए हैं इस बीच में, कुछ मेल आए हैं, और डेफिनेटली वो जो मेल हैं वो उन्हीं स्टूडेंट ने लिखे हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। उस मेल में जो मेन मैंने जो अभी दो शिकायतें जो निकाली हैं मैं आपको उसके बारे में शुरू में बताना चाहूंगा, इसी के आधार पर फिर हम दृष्टिकोण का विश्लेषण करेंगे, राइट? आप लोगों को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मैंने घोषणा की थी कि एकेडमी ने, यानी कि हम लोगों ने 10 मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये मॉक टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट हैं, है ना। उन्होंने बकायदे रजिस्ट्रेशन कराया, उसके लिए उन्होंने फीस दी है, तो उनको हम 10 मॉक टेस्ट यानी कि टोटल 1000 क्वेश्चन प्री के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उनके लिए था, ठीक है। इसके बारे में जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे कुछ प्रिय विद्यार्थियों के मेल आए और उसको उन्होंने कहा कि सर आप हमें भी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो हमारे प्रति किया गया अन्याय है, ये एक दृष्टि है, राइट। देखिए मैं आलोचना प्रत्यालोचना की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें तो देखिए होती ही रहती हैं, ठीक है। यहां समझने की बात है कि अगर सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो ये हुआ कि चूंकि आप हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे प्रति अन्याय है, आपको चाहिए कि आप हमें भी प्रोवाइड करें, ठीक है। अब मैं एक दूसरे मेल की बात कर रहा हूं, और देखिए ये जो ये दूसरे मेल तीसरे मेल की बात कर रहा हूं, तो आप मत समझिएगा कि इसके बारे में एक 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 मेल आए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के मेल आए। दूसरी बात यह हुई कि जब मैं डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में किसी घटना का जिक्र कर रहा होता हूं, तो आपने देखा होगा कि मैं अपने जो ऑनलाइन क्लास के जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनको ये इंगित करता हूं कि आप ये लेक्चर सुन लीजिए, है ना। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं उन्हें इंगित कर देता हूं कि नहीं नहीं देखिए आप इस लेक्चर को जरूर सुनिएगा, है ना, ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। जैसे मैंने जब महाराष्ट्र विधान परिषद के बारे में बात की तो उनको बताया कि ठीक है आप इससे संबंधित लेक्चर सुन लीजिए, आप इससे संबंधित लेक्चर सुन लीजिए। इसके बारे में मेरे पास मेल आए कि सर जब आप ये कहते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट को कि आप ये लेक्चर सुन लीजिए तो आई फील हर्ट, तो मुझे बहुत दुख होता है, और केवल मुझे ही दुख नहीं होता है सर, बल्कि मेरे जो मित्र हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख होता है, तो प्लीज सर अब इसमें यह कि या तो आप ये बात कहिए ही मत, और अगर कहिए तो वो लेक्चर हमें भी प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों ये दो घटनाएं हैं जो सच की घटनाएं हैं, और ये उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं, या कह लीजिए कि उनकी दृष्टि है जो इस मामले में मेरे पास आए हैं। तो आइए अब हम इसकी थोड़ी सी चीर फाड़ करते हैं, है ना, दृष्टिकोण, तब आपको समझ में आएगा कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण क्या होता है। दोस्तों यहां साफ है कि मेरा ये डेली ऑडियो लेक्चर आप सबके पास जा रहा है, ये फ्री है, ठीक है। दूसरा ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करना होता है, हमने वो पेमेंट न्यूनतम जो हो सकता है वो रखने की कोशिश की है, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं, आप इन सवालों पर विचार कीजिएगा, और हो सकता है कि इसके जरिए आप थोड़ी सी अर्थव्यवस्था को भी समझ सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने भी रजिस्ट्रेशन कराया होता, आप भी पेड स्टूडेंट होते, तो क्या आप ये लिखते कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या क्या आप ये लिखते कि मैं हर्ट फील कर रहा हूं? आप नहीं लिखते। हाँ ये जरूर था कि अगर आपकी अप्रोच यही है और आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते और मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में अगर ये कहता कि ये हम अपने जो जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उन स्टूडेंट को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आप जरूर मेल लिखते कि सर तो फिर हमने क्या अन्याय किया, हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं, हमने क्या अपराध किया था कि आप हमसे उसी के लिए पैसा ले रहे हैं और दूसरे को आप फ्री दे रहे हैं। आप कहते कि नहीं कहते आप बताइए, लेकिन चूंकि आपने वहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है तो यह कहना आपको चूंकि सूट कर रहा है, आपके अपने पक्ष में है, तो बिना इस बात का विचार किए कि क्या सच में ऐसा संभव है, या अगर सर ये लेक्चर्स और ये मॉक टेस्ट हमें भी प्रोवाइड कर देंगे तो उन विचारों का क्या होगा जिन्होंने पैसे दिए हैं, तो क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं होगा, आपने अपनी बात रख दी। दोस्तों अगर आप प्रशासन में जाकर के इस तरह से निर्णय लेंगे तो आप सोच करके देखिए कि क्या आप करेंगे, है ना, इसलिए मैं वस्तुनिष्ठ दृष्टि की बात कर रहा हूं। दूसरी है आई फील हर्ट, राइट, कि मुझे इससे दुख होता है कि आप कहते हैं कि ऑनलाइन के जो स्टूडेंट हैं, जो पेड स्टूडेंट हैं, वो इस लेक्चर को सुने। दोस्तों यहां भी बात वही है कि उन्होंने उसके लिए पैसा दिया हुआ है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं और आपके बगल से एक अच्छी चार्टर्ड बस गुजरती है वोल्वो की, तो क्या आप हर्ट फील करते हैं क्योंकि वो चार्टर्ड बस आपके बगल से गुजर गई और उसने आपको नहीं बैठाया फ्री में? या जब आप ट्रेन में जा रहे होते हैं और ट्रेन में आपने सेकेंड क्लास का रिजर्वेशन कर लिया हुआ है आप सेकेंड क्लास में बैठे हुए हैं, उसी में थर्ड एसी का भी डब्बा लगा है, सेकेंड एसी का भी डब्बा लगा हुआ है, फर्स्ट एसी का भी डब्बा लगा हुआ है, तो क्या आप हर्ट फील करते हैं कि भैया मुझे मैं सेकेंड सिंपल सेकेंड क्लास में क्यों जा रहा हूं, मुझको सेकेंड एसी में क्यों नहीं ले जाया जा रहा है, मुझे फर्स्ट एसी में क्यों नहीं ले जाया जा रहा है, जबकि वो डब्बा तो उसी इंजन में लगा हुआ है, उसी तरह से उसे जाना है, तो मुझे भी वहां बैठा लेते, तो क्या आप हर्ट फील करते हैं? क्यों आप हर्ट फील नहीं करते हैं? आप इसको इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखिए। इसका मतलब है कि जो चीजें चाहिए आपको सारी फ्री में चाहिए, इसका यही मतलब हुआ कि सारी चीजें फ्री में चाहिए। देखिए सरकार तो फ्री में दे सकती है, रेल तो सरकार की, सरकार सबको फ्री में चला दे ना, रेल चला दे फ्री में, सब बैठ करके जाए और सारे डब्बे वो फर्स्ट सेकेंड एसी के कर दे तो सभी बराबर बराबर चले जाएंगे। लेकिन यहां फिर मेरा एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि सरकार अगर ट्रेन चलाएगी तो उसको चलाने के लिए खर्चा तो लगेगा, ट्रेन खरीदनी है, उसमें लोग चाहिए, रेलवे लाइन बिछाना, सारा मेंटेनेंस होना है, तो उसको पैसा तो चाहिए ना। अब उसको ये पैसा दे कौन रहा है? सरकार के पास अपना कुछ नहीं है, याद रखिए कि सरकार को जो पैसा दे रहे हैं आप और हम सब दे रहे हैं, टैक्स के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। सरकार को जीएसटी से पैसा मिल रहा है, इनकम टैक्स से पैसा मिल रहा है, कॉरपोरेट टैक्स से पैसा मिल रहा है, एक्साइज ड्यूटी से पैसा मिला, इन सबसे उसको पैसा मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि कोरोना के समय में जब पैसा मिलना सरकार को बंद हो गया है तो राज्य सरकार किस तरह से छटपटा रहे हैं कि हम कैसे सर्वाइव करें। इसका मतलब है कि जो भी पैसा मिल रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मिल रहा है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है कि आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं, और इसके बाद उसे बेचते हैं। तो जब बेचते हैं तो फ्री में तो नहीं बेचते, उसके बदले में आप पैसा लेते हैं, यही तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ। कल्पना कर लीजिए कि सारी चीजें आपको फ्री में दी जा रही हैं, सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, देन सरकार को कहां से पैसा मिलेगा? और सरकार को पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार ट्रेन कैसे चलाएगी, सरकार स्कूल कैसे चलाएगी, सरकार अस्पताल कैसे खोलेगी, और जो भी सोशल वेलफेयर के काम कर रही है वो कैसे करेगी? वो सब इसलिए कर पा रही है क्योंकि इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में बाजार है, उसमें चीजें उत्पादित की जा रही हैं और वहां चीजें बेची जा रही हैं, और खरीदने वाले अपनी अपनी जरूरत, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उस तरह की चीजें खरीद रहे हैं, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से खरीद रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएं हैं कि मैं एजुकेशन पे खर्च करूं, या मैं फिर ब्रांडेड शर्ट पहनने में खर्च करूं, या मैं स्मार्टफोन लेने में खर्च करूं। आपकी अपनी च्वाइस है, आपकी प्राथमिकता के आधार पर आप अपना जो व्यय है उसका एक विवरण तैयार करते हैं। तो दोस्तों, यहां जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं स्पेशली कि ये जो दो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, आपको केवल विचार करना है कि जो शिकायतें हैं क्या वो वास्तव में वस्तुनिष्ठ हैं या वो सीधे सीधे एकदम ही व्यक्तिनिष्ठ है, जिसे आप सब्जेक्टिव कहते हैं। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब है कि जो मुझे सूट करता है वही सही है, मैं उसे व्यापक रूप में नहीं देख पाता, मैं उसे तटस्थ होकर नहीं देख पाता। और सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए? आप एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे तो वहां सब तरह के लोग हैं, हर जाति के हैं, हर धर्म के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, आपकी अपनी जाति के लोग हैं, आपके अपने रिलेटिव्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, धनी भी हैं, गरीब हैं, हर तरह के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। लेकिन अगर आप खुद को केंद्र में रख करके, नहीं मेरी ही जाति के लोग श्रेष्ठ हैं, मैं जो समझता हूं वही सही है, मुझे जो जरूरत है केवल वही जरूरतें होनी चाहिए, अगर इस तरह से निर्णय लेंगे तो आप कल्पना करके देखिए कि उस जिले के प्रशासन की हालत क्या होगी। मित्रों, आप तैयारी करते हैं, आप बहुत तैयारी करते हैं, आप रात दिन लगे रहते हैं, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ जाते हैं, कहां कहां से कोचिंग कर रहे हैं, कर रहे होंगे या करेंगे या नहीं भी करेंगे, तो आप लगे हुए हैं, सालों साल लगे हुए हैं। याद रखिए कि जब तक आपका जो अपना दृष्टिकोण है वह ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, इसे आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए तार्किक नहीं होगा, तब तक विश्वास कीजिए कि कम से कम मेंस और इंटरव्यू में तो आप नंबर नहीं ला सकते। आप मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए तो उसमें अक्सर आपसे आपकी राय पूछ ली जाती है, आपके विचार पूछ लिए जाते हैं, आपसे विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है। तो अगर जो मैंने दो समस्याएं बताई, अगर उन दो समस्याओं को आपके सामने रख दिया जाएगा तो आपके विश्लेषण में तो यही होगा ना कि नहीं, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है उनके साथ अन्याय हो रहा है या वो उन्हें दुखी बना किया जा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आप धीरे धीरे जैसे भी अपने खिलाफ खड़े होइए, अपने खिलाफ संघर्ष कीजिए, और जो भी आप निर्णय लेते हैं जीवन के छोटे छोटे संदर्भों में, जो भी आप निर्णय लेते हैं आप थोड़ा सा वक्त इसके लिए भी दीजिए। केवल पढ़ने में ही समय मत लगाइए कि मैंने ये जो निर्णय लिया है इस टॉपिक के बारे में, मैं जो ये सोच रहा हूं इस घटना के बारे में, मैं जो ये सोच रहा हूं इस व्यक्ति से जो मैं ये बात कर रहा हूं, मेरी ये सारी बातें, इसको जो मैं राय दे रहा हूं वो कितना वस्तुनिष्ठ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल इसलिए है क्योंकि मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह इच्छा है, क्योंकि मेरा हित केवल इसी में है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। जब आप इन बातों पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आप वस्तु निष्ठता के करीब पहुंचते चले जाएंगे, जो कम से कम मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए निहायत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की जो नींव होती है विचारों के स्तर पर, उसके बारे में मुझे आप सबसे निश्चित रूप से बात करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं उपलब्ध करा रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक दोस्त हैं राकेश कुमार राजभर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं अब समाप्त करते हैं। नमस्कार।